नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की। पश्चिम एशिया में ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों की निंदा की। यूक्रेन और कतर ने दोहा में रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते में मिसाइल खतरों और मानव रहित हवाई प्रणालियों का मुकाबला करने में सहयोग शामिल। यूएमएल के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी के बाद नेपाल में विरोध प्रदर्शन। और टेनिस में फ्लोरिडा में मियामी ओपन के फाइनल महिला सिंगल्स में एरिना सबालेंका का मुकाबला कोको गॉफ से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बातचीत में पश्चिम एशिया संघर्ष पर बात की। दोनों नेताओं ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और जहाजरानी मार्गों को खुला तथा सुरक्षित रखने पर सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्रों पर हमलों की निंदा की। प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में एक उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि पिछले एक महीने से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण कई देशों में भोजन, पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि हर देश इस संकट से निपटने के प्रयास कर रहा है।
भारत तो बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस, ये जहां युद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध से प्रभावित इलाके से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पश्चिम एशिया संघर्ष पर कड़ी नजर रख रही है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ऊर्जा आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लचीलेपन और भारत की आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूती से जुड़े जोखिमों की समीक्षा के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। रक्षा मंत्री ने कहा कि बैठक में सरकार द्वारा किए जा रहे सभी उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, विद्युत मंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल रहे। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने आज कहा कि देश भर के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। एक वक्तव्य में सरकार ने बताया कि कल देश में 54 लाख से अधिक एलपीजी रिफिल वितरित किए गए हैं। सरकार ने यह भी कहा कि सभी तेल शोधक कारखाने उच्च क्षमता से कार्य कर रहे हैं, कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा जा रहा है। इसके अलावा वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन संकट पूर्व स्तर के 70% तक बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए सरकार ने बताया कि पिछले महीने की 28 तारीख से अब तक 5 लाख यात्री इस क्षेत्र से भारत लौट चुके हैं। संयुक्त अरब अमीरात से भारत के लिए विभिन्न हवाई अड्डों से आज लगभग 85 गैर निर्धारित उड़ानें संचालित होने की संभावना है। ईरान, इसराइल और इराक से भारतीय नागरिकों की यात्रा विभिन्न देशों के माध्यम से सुगम बनाई जा रही है। इस बीच क्षेत्र भर में मिशन और दूतावास 24 घंटे काम कर रहे हैं और 24/7 हेल्पलाइन उपलब्ध है। सुरक्षा और समुद्री अभियानों पर जोर देते हुए सरकार ने कहा है कि उसने अब तक 938 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी में सहायता की है, जिनमें पिछले 24 घंटे में 25 लोग शामिल हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की दोहा यात्रा के दौरान यूक्रेन और कतर ने रक्षा सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने क्षेत्रीय तनावों और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के बारे में चर्चा की। श्री जेलेंस्की ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से भेंट की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव और यूक्रेन में जारी संघर्ष सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की समीक्षा की। कतर के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौते में मिसाइल खतरों और मानव रहित हवाई प्रणाली का मुकाबला करने में सहयोग के साथ दोनों देशों के बीच विशेषज्ञता का आदान प्रदान शामिल है। बैठक में श्री जेलेंस्की ने कतर के साथ यूक्रेन की एकजुटता व्यक्त की और क्षेत्रीय देशों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की निंदा की। दोनों नेताओं ने सैन्य तनाव रोकने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और साझेदारी के नए मार्ग तलाशने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल सानी शामिल थे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूएमएल पार्टी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी के बाद सीपीएन यूएमएल के कार्यकर्ता काठमांडू घाटी में आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आए हैं। अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में यूएमएल से जुड़े जन संगठनों ने काठमांडू में बाबर महल स्थित जिला न्यायालय के सामने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। एक रिपोर्ट।
सीपीएन यूएमएल समर्थकों के कई जन संगठनों ने संयुक्त रूप से मैतीघर मंडल से विरोध मार्च निकाला। जब प्रदर्शनकारियों ने प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर दिया, लेकिन वो समूह में आगे बढ़ते रहे। मैतीघर से न्यू बनेश्वर की ओर शुरू हुआ जुलूस जब बाबर महल पहुंचा तो कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जलाकर यातायात अवरुद्ध कर दिया। सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाते हुए वे अपने अध्यक्ष ओली की तत्काल रिहाई की मांग कर रहे हैं। बाबर महल और मैतीघर क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सरकार की पहली मंत्रिमंडल बैठक में 100 ठोस निर्णयों को स्वीकृति देने की योजना है। इन निर्णयों में पहले 100 दिन में लागू किए जाने की संभावना है। इन्हें विभिन्न मंत्रालय कार्यान्वित करेंगे। प्रत्येक मंत्री को 4 सांसदों की एक टीम सहायता के लिए मिलेगी। इस मॉडल का उद्देश्य परिचालन सहायता और निगरानी से नीति निर्माण और कार्यान्वयन के बीच मजबूत समन्वय और मंत्रियों पर कार्यभार को कम करना है। 100 दिन 100 निर्णय मॉडल की सफलता को सरकार के प्रदर्शन के लिए प्रमुख मानदंड के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। नेपाल के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने दोनों देश के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने की आशा व्यक्त की। श्री शाह ने कहा कि वे भारत के साथ मिलकर संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों की साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक हैं। श्री बालेन्द्र शाह के नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी थी। पश्चिम एशिया में ईरान ने आज दुबई में अमरीकी सेना के 2 ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने दावा किया कि दोनों ठिकानों पर 500 से अधिक सैनिक थे। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने इन पर मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। उधर अमरीकी अधिकारियों ने अभी तक हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। रूस ने कल रात यूक्रेन पर 270 से अधिक ड्रोन दागे। इन हमलों में 5 लोग मारे गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि इस हमले में ओडेसा, क्रिवी री और पेल्टावा क्षेत्र को निशाना बनाया गया। उन्होंने इन हमलों को नागरिकों के विरुद्ध आतंक बताया। उन्होंने कहा कि इन हमलों से बंदरगाहों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान हुआ है। यूक्रेन की वायुसेना ने 273 ड्रोन में से 252 को मार गिराया है। टेनिस में मियामी ओपन के महिला सिंगल्स के फाइनल में अरीना सबालेंका का मुकाबला अमेरिका की कोको गॉफ से फ्लोरिडा में होगा। सबालेंका ने सेमीफाइनल में एलेना रायबकीना को 6-4, 6-3 से हराया, जबकि गॉफ ने कैलोरीना मुचोवा को 6-1, 6-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के पहले मुकाबले में आज सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 202 रन का लक्ष्य दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 201 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ताजा समाचार मिलने तक 8वें ओवर में 1 विकेट पर 95 रन बना लिए हैं। इटली के खिलाड़ी यानिक सिनर मियामी ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में अलेक्जेंडर ज़ेवरोव को हराया। कल फाइनल में उनका मुकाबला चेक गणराज्य के ज़िरी लेहेका से होगा, जिन्होंने कल आर्थर फिल्स को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की। पश्चिम एशिया में ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों की निंदा की। यूक्रेन और कतर ने दोहा में रक्षा सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए। समझौते में मिसाइल खतरों और मानव रहित हवाई प्रणालियों का मुकाबला करने में सहयोग शामिल। यूएमएल के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी के बाद नेपाल में विरोध प्रदर्शन। और टेनिस में फ्लोरिडा में मियामी ओपन के महिला सिंगल्स फाइनल में अरीना सबालेंका का मुकाबला कोको गॉफ से होगा। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।